हमारी सूरह तौबा शुरू होती है और सूरह तौबा में इसका कुछ हिस्सा 9 हिजरी में नाजिल हुआ, जब प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को हज का अमीर मुकरर करके मक्का रवाना किया था, और इसका कुछ हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब प्यारे नबी गजवे तबुक की तैयारी कर रहे थे, और इसका कुछ हिस्सा गजवे तबुक से वापसी पर नाजिल हुआ, और कुछ जिक्र इसके अंदर गजवे हुनैन का भी मिलता है, और इसकी नाम की मुनासबत से क्योंकि इसके अंदर अहले ईमान की कसूरों की माफी का जिक्र है, उस उनवान से सूरत का नाम सूरह तौबा है, और सूरह तौबा में तौबा का जिक्र 17 दफा आया है। हालांकि सूरह बकरा जो कुरान की तवील तरीन सूरत है उसके अंदर 13 मरतबा तौबा का जिक्र आया है, सूरह आले इमरान में 3 मरतबा, सूरह निसा में 12 मरतबा। तो इसी हवाले से सूरह तौबा की अहमियत देखिए कि अल्लाह ने इसके अंदर 17 मरतबा तौबा का जिक्र किया है। और तौबा का क्या मतलब है? पलट आना, रब की तरफ पलट आना, जैसे फटा हुआ कपड़ा सी लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारी जिंदगी में हमारी सुस्तियों की वजह से, कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से जो हमारी जिंदगी में छेद हो गए, जो फट गई हमारी जिंदगी जगह जगह से, तौबा उस जिंदगी को दोबारा से सी कर बिल्कुल दुरुस्त कर देती है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने वाला बना दे। अल्लाह से दुआ करें मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे, सारी दुनिया से छुपा कर मुझे अपना कर ले, मेरी मिट्टी को खुदाया सोना कर दे। मैं तेरी चाहने वाली हूँ मगर है हसरत, जिनको तू चाहता है मुझे भी वैसा कर दे। एक नजर अपने गुनाहगार पे करके मौला, अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। सूरह तौबा की एक और खास बात क्या है कि इसके आगाज में ना बिस्मिल्लाह लिखी जाती है और ना ही पढ़ी जाती है। उसकी एक वजह तो उलमा ये भी कहते हैं कि ये सूरह अनफाल ही का एक तरह से तसलसल है। सूरह अनफाल में गजवाए बदर पे तबसरा था, तो इसमें गजवाए तबूक पर और कुछ गजवाए हुनैन पर, तो एक जैसी सूरत है। उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए सूरतों के दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। और दूसरी इसकी वजह ये भी बयान की जाती है, चूंकि इसके अंदर मुशरिकीने मक्का से ऐलाने बरात है, इसलिए अल्लाह नहीं चाहता कि इस मौके पे उसकी रहमान और रहीम सिफत का हवाला दिया जाए। और सबसे अच्छी बात जो उलमा लिखते हैं कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, इसलिए सहाबा ने भी नहीं लिखी और बाद के लोग भी इसी की पैरवी करते रहे। और ये इस बात का सबूत है कि कुरान जैसा प्यारे नबी ने दिया था वैसा ही इसको महफूज रखा गया, और इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की गई। सहाबा ने कुरान में एक शोशा तक भी खुद नहीं डाला। ये कुरान की मुकम्मल हिफाजत की दलील है। अल्लाह ताला हमसे भी अपने दीन की हिफाजत का काम ले ले। इस सूरत को पढ़ते हैं, ऐलाने बिरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीने हक को रुसवा करने वाला है। आप सोचिए इस्लाम कितना प्यारा दीन है, दीन रहमत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन्हें मारो, इन्हें कत्ल करो, 13 साल के जुल्म के बदले लो, बल्कि क्या है, मुशरिकीने मक्का को फतह हो गई, मक्का फतह हो जाने के बाद भी अब उन्हें मोहलत दी जा रही है, सोचने का मौका दिया जा रहा है। हो सकता है कोई दीन सीख ले, कोई दीन से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ले, कोई अखलाक से मुतासिर हो के, आपके रवैये से मुतासिर हो के दीन के दामन में पनाह ले ले। इतलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज्जे अकबर के दिन। हज्जे अकबर किसे कहते हैं? हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जुम्मे के दिन जो हज आए वो हज्जे अकबर है। नहीं, अरब के अंदर ये रिवाज था कि वो उमरे को हज्जे असगर कहते थे और हज को हज्जे अकबर कहते थे। लिहाजा आप भी कह सकते हैं कि हमने जिस साल हज किया था वो हज्जे अकबर था, कि हज तो हज्जे अकबर ही होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरी जिम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। अल्लाह उन मुशरिकीन को भी तौबा की दावत दे रहा है, पलटने की दावत दे रहा है, जिन्होंने मुद्दतों मुसलमानों पर जुल्म तोड़े हैं और जंगे लड़ी हैं, उन्हें भी अपने दामने रहमत में वापस लेने के लिए तैयार है। तो क्या मेरे और आपका मुंतजर नहीं होगा हमारा रब? اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ کون سی پرہیزگاری ہے؟ یہ انفرادی پرہیزگاری کا ذکر نہیں ہو رہا، انفرادی پرہیزگاری تو بہت سارے لوگ پرہیزگار ہیں، مصلی، جائے نماز، نفل پہ نفل اور بہت نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ یہاں ریاست کی نیکی کا ذکر ہے، یہاں ریاست کے تقویٰ کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تم بھی اللہ سے ڈر کر اس معاہدے کو پورا کرو۔ یہاں سیاسی تقویٰ کا ذکر ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی نظام غالب ہوگا، جب صالح حکمران ہوں گے، جب ہمارے حکمران دین اور شریعت کو نافذ کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ دن دکھا دے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یعنی مہلت دی ہے، موقع دیا ہے سوچ بچار کرنے کے لیے، 4 مہینے دیے ہیں۔ ان 4 مہینے میں بھی یہ نہیں کہا کہ لازمی اسلام ہی قبول کر لو۔ ہاں، اسلام قبول کر لو تو بہت اچھا ہے، ورنہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، یعنی پھر بھی موقع ہے، پھر بھی پلٹ آئیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جب تک ایمان لا کے نماز اور زکوٰۃ، یہ 2 بنیادی کام ہیں، یہ نہیں کریں گے، ہماری جانیں اور مال محفوظ نہیں ہیں۔ اسی آیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہاں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجا سانپ، یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، اللہ اس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والا بنا دے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، تاکہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ دین غالب ہو۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو۔ کافروں کو بھی اللہ کا کلام سنانا ہے، ان کو بھی دین کا پیغام دینا ہے، پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، غور و فکر کریں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی گنجائش دو کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہیں۔ یہاں تو کافر بے خبر ہیں، ہمارے تو اپنے بھائی بے خبر ہیں دین سے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، انہیں قرآن سنانا۔ کیوں نرمی کا معاملہ؟ اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں علم سکھاؤ، قرآن کا کلام سناؤ، اللہ کا کلام سناؤ۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں، تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی دنیا کا فائدہ اگر حاصل کر بھی لیا تو کتنا عرصہ، کتنا زیادہ۔ بادشاہت بھی مل جائے تو موت آئے تو ساتھ ہی سب کچھ چھن جائے گا، تو تھوڑی سی قیمت ہے۔ پھر اللہ کے راہ میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، یہ تو ان کا حال ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم کسی کے دین کے رستے میں اس کی رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ ہم دین کے رستوں میں، اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کسی کی راہ میں روڑے نہ ہٹکائیں، رکاوٹیں نہ بنیں، پل بن جائیں، تعاون کریں، ساتھ دینے والے ہوں۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں، انہم سا ما کانوا یعملون۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ ہی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ کن کے بارے میں؟ مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر یہ پلٹ آئیں اور یہ دو کام کرنے لگیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو کافر سے چڑ نہیں ہے، اسلام کا ہدف کافر نہیں ہے، اسلام کا ہدف ان کا کفر ہے۔ وہ کفر چھوڑ دیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے دینی بھائی بن جائیں، یہ دین کے رستے پہ ہمارے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ اور نماز جسمانی قربانی، زکوٰۃ مالی قربانی، جب تک یہ دونوں جذبے نہیں ہوں گے دین کے لیے ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سے محنت تو کرا لیں لیکن ہم پیسہ نہیں دے سکتے، یا پھر یہ کہیں کہ پیسہ لے لیں لیکن دین کی خدمت کے لیے ہم کوئی اپنی جان نہیں لگا سکتے۔ تو جان اور مال دونوں سے اپنے آپ کو حاضر کریں، اور نماز اور زکوٰۃ ان دونوں چیزوں کا مظہر ہے، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں۔ ان سارے موقع دینے کے بعد اب اگر جنگ ہو ہی جائے تو کیا ہے، پھر رحم دلی نہیں، وہاں جنگ میں رحم دلی پھر بزدلی ہوتی ہے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، یعنی اسلام قبول کرتا ہوا دیکھ کر مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل ٹھنڈے ہوں گے، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان بغیر آزمائش کے مکمل نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم ساری زندگی میڈیکل کی کتابیں پڑھتا رہے، اسے ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ وہ امتحان پاس نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، جن کے عقیدے میں شرک ہو، جن کے پیٹ میں حرام ہو تو مسجدوں کی خدمتیں بھی ان کے کام نہیں آ سکتی، درا حالے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ غلط عقیدے کے ساتھ مسجد کی خدمت بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور روز آخر کو مانے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا ہوگا۔ فرمایا اور نماز قائم کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں، اس وقت میں ان حدیثوں کا پڑھنا، آپ کہیں گے کہ مسجدیں تو بند ہیں یا مسجدوں میں تو منع کیا گیا ہے، آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، تو کیا میرے اور آپ کے بھائی اور باپ اور شوہر اور بیٹے تڑپ رکھتے ہیں کب مسجدیں کھلیں، کب آباد ہوں، اور کب وہ دوبارہ نماز کے لیے مسجدوں میں جائیں؟ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ جن کو قید کر دیا گیا تھا اور نماز کی اجازت نہیں تھی، جمعے کے دن غسل کرتے، جو بھی انہیں جیل کے اندر جتنی سہولت میسر ہوتی تیار ہوتے اور جیل کے دروازے تک جاتے، اور پھر پلٹ کر آتے اور رب کو کہتے کہ تو گواہ رہنا کہ میں جتنا مکلف تھا، جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو آج میں اور آپ اپنے گھر والوں کے، بھائیوں کے، شوہروں کے دلوں کا جائزہ لیں، ان کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں، یہ شوق پیدا کریں، اور اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کرے، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ और अगर ज़कात देने वाले ना हुए, प्यारे नबी फरमाते हैं, मेराज की रात आपने कुछ लोगों को देखा जिनके आगे पीछे धुजियां लटक रही थीं और वो जानवरों की तरह थोहर, कांटे और आग के पत्थर खा रहे थे। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। सिर्फ नमाज काफ़ी नहीं है, ज़कात भी अदा करनी होगी। और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हवा के झोंके से भी डरता है, वो जरा सी आहट से भी डरता है, वो दरवाजे के खुलने से भी खौफजदा हो जाता है, वो इंसानों से डरता है। अल्लाह हमें सिर्फ अपना डर अता करे, इन्हीं से ये तवक्कु है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुमने अजअल तुम सिकायत अलहाज व इमारत अलमस्जिद अलहरामी कमन आमन बिल्लाह वल यौम अलआखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंद अल्लाह। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोजे आखर पर, और जिसने जान फिशानी की अल्लाह की राह में? अल्लाह के नजदीक ये दोनों बराबर नहीं है। कितना नेकी का काम है हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की खिदमत करना, कितना नेकी का काम है। और हम तो किसी को देखते हैं मस्जिद हराम की सफाई करते हुए, उसको हतीम के अंदर सफाई करते हुए, खाना काबा के अंदर झाड़ू देते हुए हम रश करते हैं। कैसी तमन्नाओं से हम उन्हें देख रहे होते हैं कि हाय कैसा मर्तबा और मकाम है इनका। अल्लाह ने कहा, उनसे भी कई गुना बढ़कर मर्तबा और मकाम किसका है जो ईमान लाने के बाद अल्लाह की राह में मेहनतें करते हैं, दीन को गालिब करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, और अल्लाह कहते हैं कि मेरे नजदीक ये दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह हमें ये आला दर्जे के काम करने की तौफीक दे दे। अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता, अल्लाह के हाँ तो इन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए, जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जानो माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। ये तीन काम कामयाबी के लिए, सबसे पहले ईमान। मैं और आप कहेंगे कि हाँ शुक्र है ईमान तो है, मगर फिक्र करने की जरूरत है। ईमान भी कपड़े की तरह पुराना होता है, वो सीधा हो जाता है। हमें अपनी बेडशीटें बदलने की फिक्र, हमें नए लिबास बनाने की फिक्र, पुराने तो घिस गए, खराब हो गए। ईमान को ताजा करने की भी फिक्र पैदा करें अपने अंदर। अच्छी महफिलें, नेकी के काम, कुरान का पढ़ना और पढ़ाना हमारे ईमान को ताजा करेगा। बुरी महफिलें, बुरी सोहबतें और गुनाह के काम हमारे ईमान को घटाएंगे। ईमान के बाद दूसरा दर्जा क्या है कि फिर हिजरत करनी होगी। किसी को अपना हुलिया छोड़ना होगा, किसी को अपनी आदतों को छोड़ना होगा, गीबत को छोड़ना होगा, लघवियात को छोड़ना होगा, आराम नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, रूटीन डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। मगर जो दीन अजीज है, जिस रब से मोहब्बत है, उस रब की खातिर ये कुर्बानियां देना कोई मुश्किल नहीं होगा जब ये मोहब्बत दिल में आ जाएगी। और फिर बहुत से लोग हैं जो ईमान भी लाते हैं, फिर आदतों को, बुरी आदतों को भी छोड़ लेते हैं, लेकिन ये तीसरा काम उससे भी मुश्किल। लेकिन कामयाबी के लिए शर्त और जरूरी कि जान से, माल से, जान है तो उसे अल्लाह के रस्ते में लगाओ, माल है तो उसे अल्लाह के रस्ते में लगाओ, माल नहीं है तो जान ही पेश कर दो। और जान का मतलब ये नहीं है कि कुर्बान कर दो अपनी जान, अल्लाह वक्त मांगता है, पसीना निकलेगा, कदम उठाओ मेरे रास्ते में, अपनी सलाहियतें पेश कर दो मेरे रास्ते में। और प्यारे नबी फरमाते हैं, जिसने न कभी जिहाद किया और न उसके लिए कोई कोशिश ही की और न उसकी तमन्ना ही उसके दिल में पैदा हुई, तो वो निफाक की मौत मरा। ये मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह हमें अपनी राह में मेहनतें करने वाला बना दे। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनूदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहाँ उनके लिए पायदार ऐश के समान है, इनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह दें। तुम में से जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी कह दो, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अजीजों अकारिब, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मान पड़ जाने का तुम्हें खौफ है, और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद है, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज तर है, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। अल्लाह ने चुन चुन के उन रिश्तों का जिक्र किया, उन चीजों का जिक्र किया जिनसे हमें मोहब्बत है, वो प्यारे रिश्ते, बाप भाई बेटे शौहर रिश्तेदार, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, वो माल जो कहीं गिफ्ट में आया हो, वो माल इतना अजीज नहीं होता, लेकिन वो माल जो हमने खुद अपने हाथों से कमाया हो, उससे कितनी मोहब्बत होती है। और वो कारोबार जो खुद एस्टेब्लिश किया हो, और वो घर जो पसंद हो, एक घर वो हो सकता है कि हम कहें कि ये घर खराब है, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, यहाँ उस घर का जिक्र है जो तुम्हें पसंद है। अगर ये सारे रिश्ते और अगर ये सारी चीजें अल्लाह के मुकाबले में ईमान पर कुफर को तरजीह दें, अगर ये लोग ईमान पर कुफर को तरजीह दें, तो ईमान इतना अजीज हो कि तुम इन चीजों को छोड़ दो, इन रिश्तों को छोड़ दो, लेकिन अल्लाह को और उसके दीन को ना छोड़ो। हाँ, अल्लाह के दीन के रास्ते में ये आपके साथ मुआविन और मददगार है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी नेमत और क्या हो सकती है। अल्लाह हमारे बापों को, हमारे भाइयों को, हमारे जोज को, हमारे बेटों को, हमारे रिश्तेदारों को परवरदिगार दीन के रस्ते में हमारा मुआविन और मददगार बना दे। अल्लाह इस माल को अपने रस्ते में लगाने की तौफीक दे दे, और ये घर तेरे दीन की खिदमत में आड़े ना आए, ये वो बुत ना बन जाए कि जिसमें मैं इतनी मसरूफ हो जाऊं कि मैं तेरे हुक्मों को भूल जाऊं। ईमान की हलावत, ईमान की मिठास नसीब तब होती है जब अल्लाह और उसका रसूल सबसे बढ़कर प्यारे हों। प्यारे नबी फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई ईमान वाला ना होगा जब तक मैं उसे उसके माँ बाप से, औलाद से, तमाम दुनिया के इंसानों से बढ़कर प्यारा ना हो जाऊं। अल्लाह हमें आपसे ऐसी मोहब्बत दे दे। अल्लाह इससे पहले बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है, अभी गजवे हुनैन के रोज उसकी दस्तगीरी की शान तुम देख चुके हो। उस रोज तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गर्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई। गजवे हुनैन जिसका यहाँ जिक्र है, 8 हिजरी में मक्का और ताइफ के दरमियान वादी हुनैन में पेश आया। इस गजवे में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी, और इससे पहले कभी किसी गजवे में मुसलमानों की इतनी तादाद नहीं हुई, और दूसरी तरफ कुफार बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद कुफार के तीर अंदाजों ने इनका मुंह फेर दिया, लश्कर इस्लाम बुरी तरह तितर बितर हुआ। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मुट्ठी भर सहाबा थे जिनके कदम अपनी जगह जमे रहे, और उन्हीं की साबित कदमी का नतीजा था कि दोबारा फौज की तरतीब कायम हुई और बिलाखर मुसलमानों को फतह हुई, वरना फतह मक्का से जो कुछ हासिल हुआ था, इससे बहुत ज्यादा हुनैन में खो देना पड़ता। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया, अपनी तादाद पर, अपनी तैयारी पर गुरूर ना हो, अल्लाह की मदद पर, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले हो, अल्लाह से मदद मांगने वाले हो। जमीन अपनी पूरी वसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले, फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाजिल फरमाई, और वो लश्कर उतारे जो तुमको नजर ना आते थे, और मुनकरीन ने हक को सजा दी कि यही बदला है उन लोगों का जो हक का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सजा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक भी बख्श देता है। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक हैं। नापाक होने से मुराद ये नहीं है कि वो बजाते खुद नापाक हैं, बल्कि इसका मतलब है उनका अकीदा, उनके आमाल, उनके इखलाक, उनका जाहिलाना तरीके जिंदगी नापाक है, और इसी वजह से करके अल्लाह ताला ने हदूद हरम में उनका दाखला बंद किया है। लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाए, और अगर तुम्हें तंग दस्ती का खौफ है तो बईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। अल्लाह अलीम और हकीम है। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखर पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बनकर रहें। यहूदी कहते हैं उजैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी जुबानों से निकालते हैं। मर्तबा तो वो जो अल्लाह ने किसी को दिया, अज खुद किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को वो मकाम दे जो अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है इन सारी बातों से जो ये लोग करते हैं। उन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे, खुदा की मार इन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कैसे उलमा और दरवेशों को रब बना लिया है। हजरत अदी बिन हातिम जो पहले ईसाई थे, प्यारे नबी के पास जब हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया और कुछ जो सवालात किए उनमें ये भी था कि हम पर जो इल्जाम है कि हम उलमा और दरवेशों को रब बनाते हैं, तो हमने तो उन्हें रब नहीं माना। तो आपने फरमाया, क्या ये हकीकत नहीं कि जो कुछ ये लोग हराम करार देते हैं उसे तुम हराम मान लेते हो और जो कुछ ये हलाल करार देते हैं उसे तुम हलाल मान लेते हो। उन्होंने अर्ज किया, हाँ ये तो जरूर है। तो आपने फरमाया, बस यही इनको खुदा बना लेना है। तो किसी के कानून को, ख्वाह वो उलमा हो ख्वाह वो हाकिम हो, किसी को, ख्वाह वो शोहर हो, कोई भी हो, किसी को वो अथॉरिटी देना, वो दर्जा देना जो रब का दर्जा है। किसी के हुक्म को इस तरह से मानना जिस तरह से के रब का हुक्म माना जाता है, या रब के मुकाबले में किसी और की इताअत करना, ये दरअसल उसको रब बना लेना है। ये बहुत बड़ा शिर्क है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें शख्सियत परस्ती से मना किया है। और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो इन मुश्रिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। युरीदूना युत्फियू नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, ये लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह की रोशनी को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर रहने वाला नहीं। वह काफिरों को ये कितना ही नागवार क्यों ना हो। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये फूके क्या है? झूठा प्रोपेगेंडा, मीडिया के जरिए आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मगर अल्लाह इनके प्रोपेगेंडे से इस्लाम को नहीं बुझाएगा। काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, और ये जितना बुझाने की कोशिश करते हैं उतना ही इस्लाम फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। बस मुझे और आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत है, हम कहीं ऐसा ना हो कि जो काम काफिरों को जेब देता है वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, वो इस्लाम के खिलाफ बातें बनाएं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम खुद इस्लाम के खिलाफ बातें करते हो। कल जो काम कुफार करते थे आज वो काम मुसलमान खुद कर रहे हैं। आपने अपने हाथ में अगर चिराग पकड़ा हो तो बहुत खतरा है कहीं आपकी अपनी फूंक से ही चिराग न बुझ जाए। ये मेरा और आपका इस्लाम, इसको मेरे और आपके जरिए से नुकसान ना पहुंचे, मेरी और आपकी बातों से, मेरे और आपके अमल से इस्लाम को नुकसान ना पहुंचे। हमें तो दूसरों के, कुफार के नुकसान से इस्लाम को बचाना है, इसको जिंदा रखना है। और वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा था कि इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे। या नबी का मिशन बताया कि वो सिर्फ जिक्र अजगार करने के लिए नमाज और कलमा और कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, उन्होंने एक एक कुरान के हुक्म को दीन पर नाफिज करके दिखाया, रियासत में उस दीन को गालिब करके दिखाया। ये मेरे और आपके नबी का मिशन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से जा चुके। आज इस मिशन को मुझे और आपको पूरा करना है। दीन तो आया ही गालिब होने के लिए है, और दीन गालिब होकर रहेगा, ये तो अल्लाह का प्लान है। बस मुझे और आपको अपनी कोशिशों का जायजा लेना है। अल्लाह मुझे इस राह में इस्तेमाल कर ले। ऐ ईमान लाने वालों, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी, फिर इसी से इन लोगों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। यह है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं इस हदीस की कि जिस शख्स के पास सोना और चांदी हो लेकिन वो इसका हक अदा नहीं करता, तो कयामत के दिन उसकी तख्तियां बनाई जाएंगी और उन्हें आतिश जहन्नुम में गर्म करके उस शख्स के पहलू, पेशानी और पुश्त पर दाग लगाए जाएंगे। जब वो ठंडी होंगी तो इन्हें फिर गर्म किया जाएगा। इस तरह यह अजाब का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आज अगर कोई चूड़ी सोने की पहनी हुई होती है और रोटी पकाते हुए, खाना बनाते हुए जरा सी वो तपती है तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह हमें इस सोने चांदी का हक अदा करने वाला बनाए। सोना बुरा नहीं, चांदी बुरी नहीं, पहनना बुरा नहीं, बस ये है कि उसका हक अदा करने वाले हों। हकीकत ये है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है अल्लाह के नविश्ते में 12 ही है। इनमें से 4 महीने हराम है, यही ठीक जाबता है, लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नसीत और कुफर में एक मजीद काफिराना हरकत है जिससे ये लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल 1 महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम कर लेते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद भी पूरी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर दें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं, अल्लाह मुनकर इन्हें हक को हदायत नहीं दिया करता। इसमें मेरे और आपके लिए पैगाम है, फितरत के निजाम को ना बदलें। अल्लाह के निजाम में बड़ी रहमत और बड़ी बरकत है। कमरी महीनों के हिसाब से जो मेरी और आपकी इबादतें हैं, कितना उसमें फायदा है कि हम सर्दी गर्मी हर तरह के हालात में अल्लाह की बंदगी करने का जज्बा और हौसला और अपने आप को तैयार पाते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है? मालकुम, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा और आपका ईमान और सहाबा का ईमान कितना फर्क था। एक शख्स ने हजरत सुफियान सोरी से कहा कि सहाबा और हमारी क्या निस्बत है? फरमाया, अगर तुम इनको देखते तो दीवाना समझते, और अगर वो तुम्हें देखे तो काफिर और मुनाफिक समझे। अल्लाह हमारे ईमान की इसलाह कर दे। जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए। दुनिया की मोहब्बत फी सबीलिल्लाह अल्लाह ने निकलने को कहा, और मेरे शबो रोज और दौड़ धूप ये बताती है कि शायद अल्लाह ने फी सबीलिल्लाह दुनिया निकलने को कहा है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? और प्यारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत की मिसाल आपने यूं दी है कि दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत उसके दीन का नुकसान कर देती है। ये तिर्मिजी की हदीस का मफहूम है, और ये जहन में रहे, जो चीज दिल में बसेगी जहाँ भी उसी के रस्ते में आएगी। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत, अपने दीन की मोहब्बत अता करे, हमें अपनी आखरत की तैयारी करने वाला बना दे। प्यारे नबी फरमाते हैं, जिसने एक गम को ही अपना गम बना लिया, अल्लाह इसके लिए दुनिया के गम और फिक्र में काफी हो गया, और जिसको तरह तरह की फिक्रों ने उलझा दिया तो अल्लाह ने भी परवाह नहीं की कि वो दुनिया की किस घाटी में गिरकर हलाक हुआ। अल्लाह हमें अपना काम का बना ले, अल्लाह हमें तब्दील न करे। तुमने अगर नबी की मदद नहीं की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उस वक्त उसकी मदद कर चुका है जब काफिरों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, और जब वो अपने साथी से कह रहा था, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये हिजरत का मौका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे, मुशरिकीन आपकी तलाश में थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में पनाह ले रखी थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब मैं आपके साथ गार में था तो मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज की कि अगर इन मुशरिकों में से कोई भी अपने पाँव की तरफ देखे तो हमें पा लेगा। इस कदर करीब वो आ चुके थे तो आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, उन दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो फिर उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं? और अल्लाह की मदद कैसे आती है? अल्लाह के लश्कर बेशुमार। अल्लाह ताला ने मकड़ी से ये काम ले लिया कि उसने जाला बुन दिया और काफिर वहां से मायूस लौट गए। जब अल्लाह हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला छोटे छोटी मखलूक से भी काम ले लेता है, और जब अल्लाह की हिफाजत खत्म हो जाती है तो दुनिया भर की दौलत, साइंस और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी हिफाजत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला तू हमारी मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने इतने मुश्किल सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम गार में भी मेरे साथी थे और हौजे कोसर पर भी मेरे साथ रहोगे। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। उस वक्त अल्लाह ने इस पर अपनी तरफ से सुकून कर्म नाजिल किया और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर ना आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया। और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है, अल्लाह जबरदस्त और दाना और बीना है। निकलो अल्लाह की राह में, ख्वाह हल्के हो या भूजल, और जिहाद करो अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں ہر حال میں اپنا آپ پیش کر دینا. صحابہ کو اس ایک آیت نے ساری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، حتیٰ کہ لنگڑے ہونے کے باوجود بھی جہاد کیا. حضرت عمر بن جموح احد کے جنگ میں ایک پاؤں سے لنگڑاتے لنگڑاتے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کی، یا رسول اللہ میرے چار بیٹے ہیں، یہ خود جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے روک رہے ہیں، خدا کی قسم میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بڑھاپے کی وجہ سے، ٹانگ سے معذوری کی وجہ سے آپ کو رخصت تھی، لیکن ان کا جذبہ پیارے نبی اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے بیٹوں سے کہا کہ اپنے باپ کو جہاد پر جانے دو، شاید اللہ انہیں شہادت عطا کرے. چنانچہ حضرت عمر یہ دعا کرتے ہوئے گھر سے نکلے، الہی مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے نا امید گھر واپس نہ لانا. ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود میدان جنگ میں بے جگری سے لڑے، اور یہ فرماتے جاتے میں تو جنت کا متلاشی ہوں، میں تو جنت کا مشتاق ہوں. لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. حضرت ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود شرکت کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری 90 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، اور قسطنطنیہ میں جانے والا لشکر اس میں آپ بھی شریک ہوئے. رستے میں بیمار ہوئے تو فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکو تو مجھے آگے لے کر جانا، اور جہاں گنجائش نہ رہے بھرنے کی تو مجھے وہاں دفن کر دینا. اللہ اکبر. اور یہ آیت پڑھتے ان فروع خفافا وثقالا، حضرت ابو طلحہ نے قرآن کی جب یہ آیت پڑھی کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہم بوڑھوں جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے اللہ کے رسول کے ہمراہ جنگیں لڑی ہیں، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، پھر آپ نے ابو بکر کے ساتھ لڑی ہیں، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، پھر عمر کے ساتھ لڑی ہیں، اب آپ کی جگہ ہم جنگ کریں گے. مگر وہ نہ مانے، اور انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کی ان آیتوں کو عمل کر کے دکھایا. ہمارے لیے بہت بہانے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری عمر، ہمارے مسائل، یہ مسائل کیا ان کے نہیں تھے؟ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں.